फिर वो वाक्या याद करो, ये है वो वाक्या जिसपे हो सकता है कि सूरत का नाम सूरत बकरा हो। देखिए पूरी सूरत में आपको गाय की कोई और बातें नहीं मिलेंगी, और इस्लाम का ये मिजाज समझिए कि सूरत बकरा का नाम सुनते ही हो सकता है कि शायद इसमें कोई गाय की बातें होंगी, तो अल्लाह ताला ने नसीहत के एतबार से इस वाक्य की अहमियत को देखते हुए यहाँ ये बात रखी। मैंने और आपने इसको नसीहत से सुनना है, पूरा पढ़ेंगे और इसमें से जो रवैये आप नोट करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। फरमाया याद करो क्या, वइस काल मूसा लिकौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ। और याद करो वो वक्त जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह ताला तुम्हें गाय सिबा करने का हुक्म देता है, कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा मैं इससे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करो। यहाँ नोट कीजिएगा, मजाक करना और कॉमेडी के नाम पे ऐसे अजीबो गरीब लतीफे घड़ना और वल्गर टॉक करना, ये जाहिलों की बातें होती हैं। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा अल्लाह का इरशाद है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि दरमियानी उम्र की हो, बस जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये पूछ लो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो फरमाता है इन्नहा बकरतुन सफरा, ये एक गाय है जो जर्द रंग की होगी जिसका रंग ऐसा शोख हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें इसके तयन करने में कुछ शुबा हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो हम अब इसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया अल्लाह ताला कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोती जाती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया, फिर उन्होंने इसे जिबा किया वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। यानी करना नहीं था लेकिन करना पड़ गया। ये सारा वाक्या क्या है, बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। क्योंकि मिस्र में फिरौन की गुलामी में थे, मिस्री गाय को पूछते थे, कॉ वर्शिप कह लीजिए, उनके साथ रहते रहते इनके दिल में भी गाय का तकद्दस आ गया था। क्योंकि मुसलमान हमेशा ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। एक दूसरी वजह भी ये हो गई थी कि वक्त के साथ इनके अकायद में ये सोच आ गई थी कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा। और तीसरी एक वजह थी कि इत्तफाकन कत्ल भी हो गया और मुजरिम का पता नहीं था, पूरी सोसाइटी में खियाज बरपा था। इन तीनों के लिए अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कोई एक गाय ले लो उसको जिबा कर दो। गाय जिबा होगी तो क्या होगा, वो इनके दिल में जो गाय की इज्जत थी वो खत्म होगी। लेकिन याद रखिए जब करने को दिल ना चाहे तो वो काम मुश्किल लगता है, हीले बहाने। और आपने देखा कि गाय के लिए ऐसे सवाल करें जैसे कोई लड़की का रिश्ता देखने के लिए ढूंढता है, रंग कैसा हो, गोरी हो, चिट्टी हो, कैसी हो, क्योंकि करना नहीं था। अल्लाह कहते हैं वो थे ही नहीं करने वाले लेकिन मजबूरन करना पड़ा। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जब गाय मिली भी तो भारी कीमत पे मिली, बेजा सवालात करके इन्होंने दीन को अपने लिए मुश्किल किया। तो अल्लाह ताला उसकी जो असल रीजन थी वो बता रहे हैं, वो इस कत्ल तुम नफ्सन फद्दारातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम्मा कुंतुम तक्तुमून। और तुम्हें याद है वो वाक्या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, अल्लाह ताला ने फैसला किया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसको वो खोल कर रख देगा। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता। इस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ, देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ। आप सोचिए मुर्दा इनके सामने जिंदा हुआ, रियल में हुआ, और उसने जिंदा होने के बाद कातिल का नाम बताया और उसके बाद फिर मर गया। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है। आप इमेजिन तो करें कब्रिस्तान में कोई जाए एकदम कब्र उठ खड़ फटे और जो मुर्दा था वो जिंदा हो, फिर वो बताए मुझे किसने मारा और फिर उसके बाद वो मर जाए, कितना दिल डरेगा, खौफ आएगा ना। लेकिन इतना बड़ा मोजज़ा देखकर भी इनके दिल नहीं पिघले। यहां से देखिए इनके दिल कितने सख्त है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल ही जा रहा थी अशद्दु कसवा, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए। क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट निकलते हैं, कोई फटता है और इसमें से पानी निकल आता है, और कोई अल्लाह के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। दिलों की बात है यहाँ। आज हम सब चेक करें क्या हमारा दिल सख्त हो चुका है, पत्थरों से तो चश्मे निकलते हैं, क्या मेरी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं। कब आखिरी बार कुरान पढ़कर मैं रोई, कब अल्लाह का हुक्म सुन के मैं इस तरह लैंड स्लाइडिंग की तरह अल्लाह के आगे झुक गई। आज आप देखिए उम्मत मुस्लिमा का दिल सख्त लगता है, इतनी कत्ल की खबरें और तस्वीरें सुन चुके, चंद मिनट में खबरों में देख के हाय हाय अफसोस करते हैं, फिर कहते हैं आज मीठा नहीं बनाया, लाओ मीठा दे दो। याद रखिए उम्मत मुस्लिमा का ये भी एक बहुत बड़ा मर्ज है कि आज हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। हम मुसलमानों का ही खून बहता देखते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं पिघलते। क्यों? पत्थरों की मोहब्बत दिलों को पत्थर कर देती है। ये दुनिया के पत्थर ही है ना, डायमंड भी तो पत्थर है, बर्तन भी तो पत्थर है, और लकड़ी का फर्नीचर भी तो पत्थर है। जब एक मुसलमान मटीरियलिस्टिक हो जाता है तो उसका दिल सख्त होता है। आज उम्मते मुस्लिमा के हालात बदलने हैं ना, इसको उम्मते वसत बनाना है तो इनके दिलों को नरम करना पड़ेगा, सोज और गुदास, और इस तरह से कि इंसान जब अल्लाह का कलाम सुने तो रोने लगे। अभी इंशाल्लाह हम सुनेंगे इस रुक की तिलावत, तो आपने तिलावत सुनते वक्त जितनी रोने वाली शक्ल बना सके बनाए, ऐसी शक्ल बनाएंगे कि अल्लाह को प्यार आ जाए, क्योंकि बहुत झूमते झामते सुनना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि आपको क्या उम्मीद थी कि ये इतना बड़ा वाकया देखकर मुसलमान हो जाएंगे, पिघल जाएंगे? नहीं, अफतत्मौना युमिनुलकुम, ए मुसलमान, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को करते हो कि तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से गिरोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना फिर खूब समझ बूझ कर जान बूझ कर इसमें तहरीफ कर दी। वैसा लकुल्लजीना आमनु कालू आमन्ना, और जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी इनको मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से अकेले में इनकी बातचीत होती है तो कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब के मुकाबले में इनको हुज्जत पेश करें। यहां नोट कीजिएगा कि बनी इसराइल का कितना सवाल था कि इनके दिल से ये ख्याल ही चला गया था कि अल्लाह को गैब की बातें पता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। आज आप देखिए उम्मत मुस्लिमा के ऊपर देखिए, कई ऐसे काम हम मुसलमानों को करते देखते हैं कि जिनको देखने के बाद हमें यकीन नहीं आता कि क्या इनको इस बात का यकीन है कि अल्लाह इनको देख रहा है। तो कौमों के दिल से जब खुदा खौफी निकल जाती है तो ऐसी ही बातें करते हैं, और क्या वो ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। इनमें से एक दूसरा गिरोह उम्मीयीन का है, ये है निसफ की आयत, उम्मीयीन वही लफ्ज आ गया, जो किताब का तो इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? जहां उनको ख्वाहिशें मिलती हैं। देखिए जब मजहबी तबका सच्चे दीन को छुपाकर खाने पीने मर्च मसाले नजर न्याज वाले दीन को आम कर देता है ना, तो फिर लोग उम्मीद रह जाते हैं, अनपढ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद चंद ख्वाहिशें हैं, फुलां दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती बहिश्ती, और फुलां और कब्र पे जाके सजदा मांगो तो दुआएं होंगी, फुलां देने वाले, और इंसानों को लोग दाता कहने लग जाते हैं, लोग इंसानों को दस्तगीर कहने लग जाते हैं। ये किसी कौम के जवाल की अलामत है। मुझे तो बिल्कुल इतनी आयतें पढ़ते वक्त एक बार भी नहीं लगा कि ये माजी के मुसलमानों की कहानी है। आपको लगा? अगर ये मैं हिस्ट्री बीच में ना रखती तो क्या आपको ये ना लगता कि ये आज हमारी बातें हैं? तो अल्लाह ने मुझे और आपको पिछले लोगों की बातें क्यों सुनाई कि हम अपने हाल पे गौर करें। आइए इस रुक की तिलावत सुनते हैं, चाहे साथ पढ़ें, और आप लोग जितना ऊंची पढ़ेंगे आप देखेंगे आप खुद भी इंजॉय करेंगे, और कोशिश करें। कुछ लोगों का आप में से कोई आया था कि किरत तेज थी, लेकिन आप देखिए कि वक्त को भी साथ रखना है, इसलिए हम निस्बतन तेज चला रहे हैं। आप अगर वक्त के मामले में थोड़े से सखी हो जाएंगे तो हम तो आपको कारी बसफर की और अब्दुल्ला बासित की भी सुना देंगे। ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है कि आप जहां बैठ के सुन रहे हैं आप साथ पढ़ें, आपका घर इस वक्त गूंजना चाहिए कुरान से, और उधर वाले भी पढ़ें, ये भी सब पढ़ेंगे। आयत नंबर 40 से तिलावत होगी। जो साथी कल नहीं थे हमारे साथ आज फर्स्ट डे ज्वाइन करें तो हम सब इसको सुनेंगे और साथ पढ़ेंगे भी, जैसे हर एक अपना पारा भी पूरा कर लेगा इसके जरिए से, और प्लस ये कि हम इस पे गौर भी करेंगे। जी शुरू करते हैं। आउस बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम।
تأمرنا بالتوبة أن نصون أنفسكم
الصلاه منها كبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه وإسماعيلنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده أنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم بارئين فأعتذر عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سنزيد المحسنين فبدل الذين كفروا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون إذ استسقى موسى لقومه قلت لنضرب يساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك واجلب لنا من بخلها بكرها وكسلاتها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي وعدنا بالله هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة باءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر
عمل صالحا فلهم أجرهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما آتيناكم
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء
وإن منها لما يهبط من خشية الله